भजन संहिता 81। अपने बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अब हम भजन 81 का अध्ययन करेंगे। यहूदियों का अपना धार्मिक कैलेंडर पहले अप्रैल से आरंभ होता है। ये महीना हमारे कैलेंडर में पहली अक्टूबर के आसपास आता है। यहूदी कैलेंडर के सातवें महीने के पहले दिन तुरही बजाई जाती है, जिसे हम तुरियों का पर्व कहते हैं। तुरियों का बजाना ये दर्शाता है कि सातवां महीना वर्ष का सबसे पवित्र महीना है। सातवें महीने के पहले दिन तुरियों का पर्व होता था। उस पवित्र दिन तुरियां बजाई जाती थी कि पवित्र महीने का आरंभ हो गया है। उसके बाद यौम किपूर प्रायश्चित का दिन होता है और अंत में मंडपों का पवित्र महीना लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र सहभागिता में इकट्ठा करने का होता था। ये भजन तुरियों के पर्व पर पढ़ा जाता था। अतः इस भजन का आरंभ ये घोषणा करता है कि वो पवित्र दिन आ गया है। भजन 81 पद 1 से लेकर 7 तक। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि ये इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चेतावनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। सेला अर्थात लय का टूटना। सेला के साथ भजन का पहला भाग समाप्त होता है। वहां थोड़ी देर का मौन है, जिस समय लोग रुककर शब्दों पर विचार करते हैं। ये पवित्र सभा की बुलाहट है कि प्रभु के भजन के साथ डफ और तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तुरही का बजाना परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में ठहराया है। भजन 81 पद 7 में परमेश्वर कहता है, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। इसलिए परमेश्वर उन्हें जंगल के अनुभव में से कुछ का स्मरण कराता है। निर्जन स्थान में प्यास के मारे उन्होंने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने उत्तर दिया, अपने आप को सिद्ध किया और मरीबा नाम सोते के पास परीक्षा की। मरीबा का अर्थ है क्लह का पानी, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर और मूसा से संघर्ष किया। परमेश्वर स्वयं पुकार कर लोगों से कहता है। भजन 81 पद 8। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इसराइल भला हो कि तू मेरी सुने। परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है कि वे सुने कि वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले भजन 81 पद 9। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराए देवता को दंडवत करना। व्यवस्था में परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी। निर्गमन 20 अध्याय 3 पद। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर प्रथम है, उसे हम प्राथमिकता देते हैं और तब अन्य देवता, परंतु परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अर्थात मेरे सम्मुख कोई ईश्वर नहीं रखना। दूसरे शब्दों में हमारा हृदय पूर्णतः उसकी ओर होना चाहिए और हमारी पूरी आराधना उसी को अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी अन्य ईश्वर नहीं होना चाहिए। ये गंभीर और दुखदायी बात है कि लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। इसराइल के इतिहास में निरंतर मूर्ति पूजा बनी रही। जब से वे प्रतिज्ञा के देश में आए, वे कनानी देवताओं बाल, मोलेक, मामोन, अस्तोरेत और अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगे। वे इन देवी देवताओं की विधियों के अनुरूप चलने लगे। यही कारण था कि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, तू उनको दंडवत न करना और उनकी उपासना न करना, तो भी उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। भजन 81 पद 10, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो करना चाहता है उसकी घोषणा वो कर देता है और वो स्वयं ही उनको संबोधित करता है। हे मेरे लोगों, यहां परमेश्वर उस काम की घोषणा करता है जो अब वो अपने लोगों में करेगा। मुझे निश्चय है कि हम हमेशा परमेश्वर के उस काम को सीमित कर देते हैं जिस काम को वो हमारे जीवन में करना चाहता है। यहूदा की पुस्तक में हमें बताया गया है, यहूदा 1:21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इसका अर्थ है कि स्वयं को उस सीमा में रखो जहां परमेश्वर अपना प्रेम आपको दिखा सके। यदि आप कहते हैं मैं स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखूंगा, तो मैं सोचता हूं मुझे अपने आप को मधुर, दयावान, उदार और अच्छा बनना होगा ताकि परमेश्वर मेरी सहायता करे और मुझसे प्रेम करे। ये परमेश्वर के प्रेम के प्रति आपकी गलत विचारधारा है। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता ही है, चाहे आप अच्छे हो या बुरे। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए किसी कारण से नहीं है, वो अपने स्वभाव के कारण ही प्रेम करता है। वास्तव में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उसका प्रेम कम हो जाए। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परंतु ये अति संभव है कि मैं अपने आप को उसके प्रेम से अलग कर लूं, अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आऊं जहां प्रभु अपने प्रेम को ना दिखा सके। यही बात यहूदा हमसे कहता है। परमेश्वर उन बातों को कहता है जो वो हमारे लिए करना चाहता है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मैं तेरे जीवन आशीषों से भर दूंगा। अपने आप को पूरी तरह खोल दो और मैं तुम्हारे जीवन को पूरा भर दूंगा। परंतु परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा ने ना सुनी, इसराइल ने मुझको ना चाहा। जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोग होने के लिए चुना था, उन्होंने परमेश्वर से कुछ संबंध न रखा। वे लोग इन तुच्छ देवताओं की आराधना करने में मगन हो गए। भजन संहिता 81:12, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। रोमियों की पुस्तक के 1 में हम पढ़ते हैं, रोमियों 1:24, इस कारण परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। ये सर्वदा ही दुख की बात होती है जब परमेश्वर किसी मनुष्य से कहे, मैंने तुझे छोड़ दिया। परमेश्वर ने यरमिया से कहा, देख उनकी भलाई के लिए और प्रार्थना मत कर, क्योंकि यदि तू करे भी तो भी मैं तेरी न सुनूंगा। परमेश्वर ने कहा, ए प्रेम मूर्तियों से जुड़ा है, उसे वही रहने दो। उन्होंने अपने आप को मूर्तियों से जोड़ा है, उन्हें भूल जा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने उन्हें छोड़ दिया है, मैं आगे उनके साथ व्यवहार ना करूंगा। हम सुनते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा विवाद करता ना रहेगा। यदि परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दे तो ये एक दुखदायी बात है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके मन की अभिलाषा पर छोड़ दिया। आप किसी चीज के लिए सोचते हैं कि आप उसे दिल से पाना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि यही आपके जीवन का उत्तर है, और उसे पाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं आप करते हैं, और परमेश्वर आपको हट पर छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, यदि तू उसको खाना चाहता है तो खा, परंतु इससे तू बीमार हो जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर आपको मन की अभिलाषा पूरी करने देता है, परंतु ये आपके जीवन की सबसे बड़ी दुखदायी बात होती है कि आप अपने मन की अभिलाषा पूरी करें, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी चीजों की अभिलाषा करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। परमेश्वर जानता है कि वे हमारे लिए अच्छी नहीं है, और जब परमेश्वर हमें हमारे हट पर छोड़ देता है तब हमें जीवन का सबसे कड़वा अनुभव प्राप्त होता है। भजन 81 पद 12 में आगे लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। परमेश्वर कहता है, उनको मुझसे कोई वास्ता नहीं रहा, वे मेरे अनुसरण नहीं करते हैं। भजन 81 पद 13, परमेश्वर ने कहा, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले। परमेश्वर विलाप करता है कि उसकी प्रजा उसके मार्गों में नहीं चलती है, ओह यदि उन्होंने केवल सुना होता। भजन 81 पद 14, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यदि उन्होंने मेरी ओर कान लगाए होते। भजन 81 पद 15, यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और वे सदा काल बने रहते हैं। वे इस देश में ही रहते तो वे बंधुआई में ना जाते। मैं उनके शत्रुओं को उनके अधीन कर देता। भजन 81 पद 16, और वो उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। परंतु वे परमेश्वर की नहीं सुनते थे। ये परमेश्वर की पुकार है क्योंकि वे उसकी ओर कान नहीं लगाते। उन्होंने अपने लिए सर्वोत्तम भलाई को नहीं जाना। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम की भरपूरी को अनुभव नहीं किया। वे बंधुआई में चले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना और शत्रुओं के द्वारा नाश किए गए। इस वर्ष जब हम इसराइल जाएंगे तो मैं योजना बना रहा हूं कि अपने साथियों को गीहोन के जलाशय से लेकर ऊपर तंग दरवाजे तक जाऊं, क्योंकि पिछले वर्षों में पुरातत्व विभाग ने बहुत खुदाई की है और यरूशलेम के चारों ओर इस पहाड़ी पर पुरातत्व विभाग द्वारा सबसे ज्यादा खोज का रोचक अभियान चलाया गया है। उन्होंने दाऊद के समय के स्थान को खोदा है और यबूसियों के युग तक की खुदाई की है। रोचक बात तो यह है कि उन्होंने अनेक ऐसे मकान ढूंढे हैं जो नबूकदनेज़र की सेना के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। जब उसने सिदकया के विरोध के समय इसराइल को ध्वस्त किया था और उन घरों में छोटे देवताओं की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई है। अस्तोरेत प्रजनन की देवी की मूर्तियां, जिसके स्थनों का बड़ा आकार था, और अन्य छोटे देवताओं को उन्होंने वहां खुदाई में पाया है। ऐसा लगता है कि सभी घरों में ये छोटी मूर्तियां भरी हुई थी। यही बात वचन इनके विरुद्ध कहता है, यही परमेश्वर उनके विरुद्ध पुकार रहा है, पराए ईश्वरों की आराधना ना करो, मेरी आवाज सुनो। यदि उन्होंने मुझे सुना होता तब मैंने उन्हें देश में रखा होता, मैंने उन्हें संभाला होता, मैंने उनके शत्रुओं को नाश किया होता, परंतु उन्होंने मुझसे कोई वास्ता न रखा। और इसलिए परमेश्वर विलाप करता है क्योंकि उसके लोग बंधुआई में जाने वाले थे। परमेश्वर रो रहा था क्योंकि वे अपने ऊपर परेशानियां ला रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रभु के मार्ग में चलना ना चाहा। मुझे विश्वास है कि जब परमेश्वर हमें देखता है तब पाता है कि हम अपनी मन मर्जी की राह पर हैं, और वो जानता है कि वो मार्ग हमें कहां ले जा रहा है, इसलिए वो शिकायत करता है। हमने उसकी बातें सुनने से इनकार किया और हम हठीले होकर कहते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए। हम अपने मन की इच्छा के पीछे भागते हैं। इस प्रकार ये एक बड़ी ही विनाशकारी स्थिति होती है जब परमेश्वर हमें हमारे मन की अभिलाषा पर छोड़ देता है। वो बस खड़ा हुआ रोता रहता है और हमें बंधुआई में जाते हुए देखते रहता है, और सब दुख और दर्द जो हम अपने ऊपर लाते हैं वो उनको देखता है। वो क्या करे? हमने उसकी बात वचन में से नहीं मानी और दृढ़ किया कि अपनी इच्छा पूरी की। उन्होंने उससे कोई वास्ता रखना नहीं चाहा। वे उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर विलाप करता है। ये बहुत सुंदर भजन है। हम देखते हैं अपने लोगों की असफलता पर उसकी मूर्ति पूजा के कारण उसका मन टूट जाता है। इन अंतिम वर्षों में भी परमेश्वर ने उन प्रमाणों के खोजे जाने का प्रावधान किया जो प्रमाणित करते हैं कि यह भजन सही है। जब उन्होंने उन घरों को खोदा जो बाबुल वासियों ने बर्बाद किए थे, तब वहां असंख्य अनजान देवताओं की मूर्तियों को पाया। उसको देख हम समझ सकते हैं कि लोग परमेश्वर से कैसे विमुख हो गए थे। जिस प्रकार दाऊद ने कहा, उन्होंने पत्थरों को लेकर अपने लिए ईश्वर बना लिए, जिनकी आंखें तो है पर देखती नहीं, कान तो है पर सुनते नहीं। दाऊद अपने समय के लोगों की इस निंदा के बारे में कहता है। इसलिए इस बार जब हम वहां जाएंगे तब हम इन खुदाइयों को देखने की आशा रखते हैं।